बात न देख उम्र न देख जब चाहे मजबूर करे मौत और इश्क के आगे लोग कोई चले न बहाना जी इश्क की मार बड़ी दर्दी।
जब नाश्ते की मेज पर मुंबई के बड़े रईसों में से एक सर दिनशॉ पेटिट ने अपने प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का आठवां पन्ना खोला तो एक खबर पर नजर पड़ते ही अखबार उनके हाथों से नीचे गिर गया। तारीख थी 20 अप्रैल 1918 और खबर थी पिछली शाम मोहम्मद अली जिना ने सर दिनशॉ की बेटी लेडी रति से शादी कर ली। कहानी शुरू हुई थी 2 साल पहले जब सर दिनशॉ ने अपने दोस्त और वकील मोहम्मद अली जिना को दार्जिलिंग आने की दावत दी। वहां पर दिनशॉ की 16 साल की बेटी रति भी मौजूद थी जिनका शुमार उस जमाने में मुंबई की सबसे हसीन लड़कियों में हुआ करता था। जिना उन दिनों भारतीय राजनीति के शिखर को छूने के बिल्कुल करीब थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र 40 की थी लेकिन दार्जिलिंग की बर्फ से ढकी खामोश चोटियों और रति के बला के हुस्न ने ऐसा समा बांधा कि रति और जिना एक दूसरे के प्रेम पाश में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने उसी यात्रा के दौरान सर दिनशॉ पेटिट से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। मिस्टर एंड मिसेस जिना द मैरिज दैट शुक इंडिया की लेखिका शीला रेड्डी बताती हैं।
कहा जाता है कि जिन्ना सर दिनशॉ के पास जाके कहा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंटर कम्युनल मैरिजेस, तो उसने बिना सोच के उसने कहा बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि इससे इंडियन कम्युनिटीज विल गेट मोर यूनाइटेड। तो फिर जिन्ना उसका एक्सप्रेशन बिना बदल के उसने कहा तो अच्छा है क्योंकि हम तुम्हारा बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। तो उससे वो तो गुस्सा से पागल हो गया था और उसने मना कर दिया कि ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, हाउ कैन यू मैरी हर। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो और हमारा बेटी पारसी है क्योंकि उस जमाने के एंग्लिसाइज्ड एलिट में दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू से, बट उसने ये चीज़ को बार बार दोहराया कि हमारा बेटी तुमसे 24 साल कम है।
दिनशॉ इतने नाराज हुए कि उन्होंने रति और जिना के मिलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद जिना और रति एक दूसरे से न सिर्फ चोरी छिपे मिलते रहे बल्कि एक दूसरे को खत भी लिखते रहे।
जब वो मना किया शादी को फिर भी वो रति बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, पापा का बात नहीं सुना और वो ऐसी मिलते रहे। तो उसने एक केस लगाया अबडक्शन का कि आई फियर माय डॉटर इज गोइंग टू बी अबडक्टेड फॉर हर मनी बाय जिन्ना। तो जिन्ना कट ऑफ ऑल टाइज विद हर एंड वुड नॉट सी हर एट ऑल, बट लेटर्स वर गोइंग बैक एंड फोर्थ। सो एक दिन उनके हाथ में एक लेटर आया था और वो पढ़ रही थी जब उसके फादर उनको देखा और वो सुनती नहीं थी। फादर का बहुत पेटेड फेवरेट डॉटर थी एंड वेरी स्पॉइल्ड। सो व्हेन ही सॉ हर रीडिंग दैट लेटर उसके पीछे भागने लगे कि हमको पता है वो जिन्ना का लेटर है, और वो भागती रही।
दिनशॉ ने अदालत से आदेश ले लिया कि जिन्ना तब तक रति से नहीं मिल सकते जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। रति जिना पर किताब लिखने वाले ख्वाजा रजी हैदर कहते हैं,
सर दिनशॉ पेटिट ने इस वाकई दार्जिलिंग के वाकई के बाद एक इससे ऑर्डर ले लिया था कोर्ट से कि मेरी बेटी जो है वो नाबालिग है और ये अभी 18 साल की उम्र को नहीं पहुंची है, इसलिए इसके मिलने जुलने पर इनसे पाबंदी लगा दी जाए। तो जिना जो थे उसके बाद सर दिनशॉ पेटिट के घर पे उन्होंने कोई विजिट नहीं किया और रति जो थी वो अपने घर में एक तरह से मुकैद हो गई। लेकिन जब रति 20 फरवरी 1918 को 18 साल की हुई तो उसने शायद कोई मैसेज भेजा था, एक अब्दुल्ला बरेलवी थे जो बंबई क्रॉनिकल के एडिटर होते थे, उनके जरिए से जिन्ना को, तो जिन्ना ने उन्हीं के जरिए से रफीक को ये पैगाम भेजा कि नहीं, आपको अपना घर छोड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे पास आने के लिए और मुझसे शादी के लिए अपना आबाई मजहब है उसे तर्क करना पड़ेगा। जिन्ना उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन थे और वो बंबई के मुसलमानों की एक सीट पर थे, और शायद उस जमाने में सिविल मैरिज के सिलसिले में ये होता था तो उस वक्त ये जाहिर करना पड़ता था कि हमारा किसी मजहब पर बिलीव नहीं है और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो जिन्हा इस सूरत हाल से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा रत्ती से कि जब तक तुम इस्लाम नहीं कबूल करोगे उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती। फिर रत्ती आई और रत्ती को आगे जिन्हा ने पहले बम्बई की जामा मस्जिद के पेशवाम थे मौलाना नजीर अहमद खजंदी, उनके हाथ से उसने इस्लाम कबूल किया। और फिर अगले दिन वो राजा साहब महमूदाबाद जो थे महाराजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान, उनकी सरकर्दगी में जिन्ना के घर में ही रति जो है वो जिन्ना के निकाह में दाखिल हो गए।
जिन्ना ने रति को मेहर में 1,25,000 रुपए दिए, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन जब निकाह के बाद अंगूठी पहनाने का वक्त आया तो पता चला कि जिन्ना रति के लिए अंगूठी खरीदना ही भूल गए हैं।
वो इतना बिजी थे कि ये सब अरेंजमेंट्स में शायद स्लिप हो गया। दिस वाज द मोस्ट माइनर डिटेल एज फार एज ही वाज कंसर्न्ड, बिकॉज़ ही वाज डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स। और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स भी उस टाइम बहुत चल रहा था। निकाह के टाइम आया और जब वो रिंग मांगा जो मुल्ला ने कि ये अभी पहनाओ रिंग, तो उनको अचानक रियलाइज हुआ कि हम रिंग नहीं लाया। तो उनके वेरी गुड फ्रेंड द राजा ऑफ महमूदाबाद, सो ही टुक आउट हिज रिंग एंड गेव इट टू हिम टू पुट इट ऑन हर।
1918 के उस बसंत में जिन्ना और रति के दमकते हुए चेहरों को देखकर लगता कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रति अपने लंबे बालों में हमेशा ताजे फूल सजाती, वो सुर्ख और हल्के नीले या गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाक पहनती। जब वो चांदी और संगमरमर के लंबे सिगरेट होल्डरों में दबी अंग्रेजी सिगरेटों का धुआं उड़ाती तो उनकी शख्सियत में चार चांद लग जाते, जिन्हा के एक और जीवनीकार प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद बताते हैं।
दोनों में फर्क बहुत था, उनमें बेनहोमी थी। ये जाते हुए अपनी गाड़ी रोककर भुट्टा खरीदती थी और वो खाती हुई जाती थी। जिन्हा को ये चीजें पसंद नहीं थी, जिन्हा ने सब बर्दाश्त किया। She was actually a rebel in the sense. Rati Jinnah was cream de la cream, Bombay ki. और लोगों को सब पारसी कम्युनिटी को यही दुख था कि उनकी क्रीम डे ला क्रीम एक मुसलमान से शादी की और वो कन्वर्ट भी हो गई। वो पारसी गवर्नेंस पहनती थी जो लो निकलाइंस होते थे। कहा ये जाता है कि वो बाथ टब में पानी भर कर वहाँ ऊपर बैठ कर खुद अपनी शक्ल को देखती रहती थी।
कई मामलों पर बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन से जिन्ना का टकराव हुआ। एक बार लॉर्ड विलिंगटन ने जिन्ना और रति को रात के खाने पर आमंत्रित किया।
रति जो थी वो अपने जमाने की निहायत फैशनेबल खातून थी, उनको फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। इतनी हसीन तरीन औरत थी वो, तो बहुत लो नेक था जिसको वो पहन के उस दावत में गई थी। तो उस पर लेडी विलिंगटन ने ये बात कही थी कि अपने एडीसी से के जाके मेरी शॉल ला दो, शायद रति सर्दी महसूस कर रही होंगी, क्योंकि लॉन में एक दावत हो रही थी। तो उस पे जिन्ना जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा जब रति को सर्दी महसूस होगी तो ये खुद आपसे शाल मांग लेंगे, और ये कह के जिन्ना एहतजाजन उस दावत से वॉकआउट कर गए।
इसी तरह की घटना शिमला में हुई थी जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड को रति का भारतीय अंदाज में नमस्कार कहना रास नहीं आया था।
वहाँ पर जब वो वाइसरॉय आते हैं तो फिर सब लोग खड़े होके उसको कर्टसी करते थे। पहले तो कुछ लोग कहते हैं वो उठती भी नहीं, वो बोलती थी हम लेडी है हम क्यों उठना है। फिर जब उठती थी वो नमस्कार करती थी, वो कर्टसी नहीं करती थी। तो जब ऐसे हुआ वो एडीसी उसको बुलाया और बोला कि वाइसरॉय वांट्स टू टॉक टू यू। तो वो गई और उसने बहुत पॉम्पसली उनसे कहा, मिसेस जिन्ना यू नो दैट योर हस्बैंड हैज़ अ वेरी बिग फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, सो व्हेन यू आर इन रोम यू शुड बिहेव एज रोमन्स डू। तो उसने उसको देख के बोला, आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट इन इंडिया, आई डिड अ नमस्कार टू यू।
रति की अल्हड़ अदाओं ने कई बार जिन्ना को राजनीतिक परेशानियों में भी डाला। जिन्ना के असिस्टेंट रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम चागला ने अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में रति और जिना से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प संस्मरण लिखा है।
एक बार रति जिना की शानदार लंबी गाड़ी में टाउन हॉल पहुंची। जब वो कार से बाहर उतरी तो उनके हाथ में एक टिफिन बास्केट थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने कहा, जे, वो जिना को इसी नाम से बुलाती थी, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूं। जिना का जवाब था, भला मैं कैसे बता सकता हूं। इस पर रति बोली, मैं तुम्हारे लिए वही पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूं। ये सुनते ही जिना परेशान हो गए, बोले, माय गॉड, ये तुमने क्या किया? क्या मुझे चुनाव में तुम हरवाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अलग मुसलमान वोटरों वाली सीट से चुनाव लड़ रहा हूं? अगर मेरे वोटरों को पता चल गया कि मैं लंच में सुअर के मांस की सैंडविच खा रहा हूं तो फिर मेरे जीतने की क्या उम्मीद रह जाएगी? ये सुनते ही रति का चेहरा उतर गया। उन्होंने फटाफट टिफिन वापस उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए कार से वापस चली गई।
45 के होते होते जिना भारत के नामी बैरिस्टर बन चुके थे। उनके पास अपनी जवान बीबी के नखरों के लिए कोई वक्त नहीं था। चागला लिखते हैं,
रति ने जिना से उनकी शख्सियत के ग्लैमर की वजह से शादी की थी। दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। जिना हर रोज अपने मुकदमों के लिए तैयारी करते। मुझे याद है हमारी मंत्रणा चल रही होती और रति कुछ ज्यादा ही बनठन कर आती और जिना की मेज पर अपनी टांगे लटकाकर उन्हें हिलाने लगती कि कब जिना अपनी बात खत्म करें और वो उनके साथ घर जाने के लिए निकलें। जिना के मुंह से नाराजगी का एक लफ्ज भी नहीं निकलता। वो अपना काम इस तरह कर रहे होते जैसे रति वहां मौजूद ही न हो।
1926 आते आते जिना और रति के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उनके बीच उम्र का फासला तो था ही, जिना के बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण ने भी उनको दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई।
26 में जब जिना ने कांग्रेस के रवैये को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया और उन्होंने ये देख लिया कि कांग्रेस जो है किसी सूरत से भी मुसलमानों के जो हुकूक हैं और जो मुसलमानों के मुतालबात हैं उनको एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं है, तो लाजिया से जिना का झुकाव तमाम मुसलमानों की सियासत की तरफ हो गया। और यही वो मरहला है जहां से रति जो थी उन्हें ये यकीन हो गया कि जिना जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ निकल गए। तो यही यहां से जिना का और रति का इख्तलाफ हुआ। फिर ये कि रति बीमार भी रहने लगी थी, कुछ हॉलुसिनेशंस का शिकार हो गई थी वो कुछ, तो उसकी वजह से वो 1927 में ही इतनी बीमार हो गई थी कि उन्हें 1928 में फिर फ्रांस जाकर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी। ये इख्तलाफ जो था ये उम्रों का तफावत तो अपनी जगह पर था लेकिन शायद एक सियासी इख्तलाफ भी डेवलप हो गया था दोनों के दरमियान।
20 फरवरी 1929 को मात्र 29 साल की उम्र में रति जिना का निधन हो गया। उनके आखिरी दिनों में उनके पुराने दोस्त कांजी द्वारकादास उनके साथ थे।
कांजी कहता है शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड और एक दिन जब वो बहुत पेन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी, वो जीना नहीं चाहती थी, तो कांजी वॉज ट्राइंग वेरी डेस्परेटली टू कीप हर स्पिरिट्स अप। ही लेफ्ट हर फॉर अ फ्यू आवर्स थिंकिंग दैट ही विल कम बैक एंड चेक ऑन हर। व्हेन ही सेड आई विल सी यू लेटर शी सेड इफ आई एम स्टिल अलाइव। उसी रात को उसका डेथ हो गया। मच लेटर इन एन इंटरव्यू सम पाकिस्तानी राइटर हैड कम टू बॉम्बे एंड टेकन इन इंटरव्यू विद कांजी लॉन्ग आफ्टर जिन्ना डाइड, लॉन्ग आफ्टर रति डाइड, व्हेन ही सेड दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग स्लीपिंग पिल्स।
रति की तबीयत खराब होने की खबर जिना के पास तब पहुंची जब वो दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट में बैठे हुए थे। उनके पास मुंबई से एक ट्रंक कॉल आया। लाइन पर उनके ससुर दिनशा पेटिट थे। पिछले 10 सालों में ये पहला मौका था जब दोनों के बीच कोई बात हुई थी। जिना फौरन ही मुंबई के लिए रवाना हो गए थे।
जब वो ट्रेन में बैठे तो फिर उनको वाइसरॉय का और बाकी लोग का कंडोलेंसेस टेलीग्राम्स आना शुरू किया, तो उनको मालूम था जब तक वो बॉम्बे पहुंचे कि वो अभी नहीं रही। सब लोग उनके लिए वेट कर रहे थे। जिन्ना जस्ट ड्रोव स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेशन टू द सिमेट्री एज हर हस्बैंड ही हैड टू बी द फर्स्ट टू थ्रो द अर्थ ऑन हर बॉडी। सो व्हेन ही केम एंड ही थ्रू दैट क्लॉड समथिंग ब्रोक विद इन हिम And he couldn't control himself anymore, and he broke down and he cried. But he recovered very fast and told his good friend Kanji Dwarkadas, "Can you come home?" And Kanji thought that maybe he wanted to know what happened to Rathi in the time when he was in Delhi, because Kanji was the only one who saw Rathi. Jab wo ghar gaye, to wo foot foot ke rone lage ki. इतना रोए कि कंजी कहता है कि उसको लगा कि वो एक ग्रीफ नहीं है मगर एक एज इफ सम ग्रेट डैमेज हैज बीन डन टू हिम और इसके बाद वो बहुत चेंज हो गया।
ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता अगर और यही इंतजार होता।
रिहान फजल, बीबीसी दिल्ली।